आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, SBS हिंदी के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि कुमार और प्रस्तुत है 27 जुलाई 2026 के मुख्य समाचार। न्यू साउथ वेल्स की इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन यानी ICAC द्वारा 8 सप्ताह तक चलने वाली सार्वजनिक जांच में लिबरल पार्टी से जुड़े राजनीतिक चंदों की पड़ताल की जा रही है। जाँच में आयोग की ओर से पैरवी कर रही पेगी ड्वायर ने कहा कि अब तक जांच के तहत कई निजी सुनवाई यानी प्राइवेट हियरिंग्स हो चुकी हैं। अब सार्वजनिक जांच में 10 लोगों से जुड़े उन आरोपों की जांच की जाएगी जिनमें राज्य के चुनावी कानूनों के संभावित उल्लंघन का मामला शामिल है। उन्होंने कहा,
The commission will investigate whether a number of individuals, namely Dallas McInerney, Christian Ellis, Jeremy Greenwood, Robert Asaf and Jean-Claude Perrottet entered into and or carried out a scheme for the purpose of circumventing a prohibition or requirement regarding political donations, including in particular the prohibitions on accepting political donations that exceed applicable caps.
होटल व्यवसायी माइकल ओहारा इस जांच में गवाही देने वाले पहले गवाह हैं। उनसे आज यानी 27 जुलाई को पूछताछ की जाएगी। इसके बाद इस सप्ताह पूर्व लिबरल पार्टी स्टाफर डिलन विटलॉ और सलाहकार रॉबर्ट एसॉफ भी आयोग के सामने पेश होंगे। वहीं लिबरल पार्टी के वरिष्ठ सांसद एंड्रू बैक का कहना है कि 2028 के अगले फेडरल चुनाव से पहले कोअलिशन और वन नेशन पार्टी के बीच संभावित साझेदारी एक विकल्प हो सकती है। 9,000 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई मतदाताओं पर किए गए एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलों की तुलना में वन नेशन के समर्थन में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह सर्वेक्षण कैपिटल ब्रीफ डेमोस AU द्वारा किया गया था। इस सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि यदि यही रुझान अगले फेडरल चुनाव में भी जारी रहा तो वन नेशन 53 से 66 सीटें जीत सकती है। हालांकि बहुमत की सरकार बनाने के लिए आवश्यक 76 सीटों के आंकड़े से वह अभी भी पीछे रहेगी। एंड्रू ब्रैग ने चैनल 9 से कहा कि अगर गठबंधन बनाने की जरूरत पड़ी तो उस समय हम फैसला करेंगे। उन्होंने कहा, यदि कोई हमारे साथ गठबंधन करने में रुचि रखता है तो हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। हालांकि कोएलिशन के नेता एंगस टेलर इससे पहले स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि उनकी पार्टी वन नेशन के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेगी। दूसरी तरफ सोशल सर्विसेज मंत्री टानिया प्लिवर्सिक ने उस आलिशान घर में प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीशी की मौजूदगी का बचाव किया है जो इस समय ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस यानी ATO की सुरक्षा संबंधी जांच के दायरे में है। प्रधानमंत्री एल्बनीशी ने कहा कि उन्हें उस मकान के मालिक फेलिक्स ली के पिता फिलिप डोंग फांग ली से जुड़े धन के संदिग्ध लेन देन के आरोपों की जानकारी नहीं थी। फिलिप डोंग फांग ली पर आरोप है कि उन्होंने चीन से धन ऑस्ट्रेलियाई बैंक खातों में पहुंचाने की व्यवस्था की। चैनल 7 से बातचीत में तानिया प्लिवर्सिक ने सरकार के नए राजनीतिक चंदा कानूनों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के तहत राजनीतिक चंदों और चुनावी खर्च पर सीमा तय की गई है तथा चंदों की लगभग रियल टाइम रिपोर्टिंग की व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीशी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में स्पेन और फ्रांस में फैल रही भीषण जंगल की आग के कारण अब तक 3,30,000 से अधिक लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। आग अब फ्रांस के ऐतिहासिक शहर बोर्डो के बाहरी इलाकों तक पहुंच गई है। फ्रांस में करीब 2,20,000 और स्पेन में 1,15,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। फ्रांस के नेशनल फायर फाइटर्स फेडरेशन के अनुसार आग के ऊपर एक विशाल पायरो क्यूम्यूलोनिम्बस बादल बन गया है। यह बादल अपनी स्वयं की तेज हवाएं पैदा करता है और बिजली गिरने का कारण बन सकता है जिससे नई जगहों पर भी आग भड़कने का खतरा बढ़ जाता है। आग से प्रभावित तटीय शहर लेपोर्ज में पुलिस अधिकारी घर घर जाकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। अब खबरें भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA की परीक्षाओं में सुधार के लिए इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। इस समिति में इसरो के पूर्व प्रमुख S. सोमनाथ सहित शिक्षा, सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े कई विशेषज्ञ शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह टास्क फोर्स तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और संरचनात्मक सुधारों के जरिए परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के सुझाव देगी। इसी के साथ 27 जुलाई के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।